वी हैव टू वर्क टूगेदर। और अगर मुल्क में कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी फलां शख्स को भी मरी, तो वो तो ये हिंदुस्तान वाला बात हो गई ना कि मोदी जी कहते हैं कि जी इसको भी पाकिस्तान बदर कर दो, इसको भी पाकिस्तान बदर कर दो। वी ऑल हैव टू लिव टूगेदर, वी डू हैव आर वीकनेसेस, वी डू हैव आर स्ट्रेंथ, एंड आई विश के हम पाकिस्तानी तमाम के तमाम वतन के साथ सिंसियर हो सकें। आमीन। जिस दिन PIA का भट्टा बैठा था तो किसको नवाजा गया था? आम वर्कर्स को। किसने नवाजा था? पॉलिटिशियंस ने। स्टील मिल का भट्टा गोल हुआ था तो किसका नुकसान हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ। आम वर्कर्स का तो फायदा हो गया था कि पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए अपनी इंडस्ट्रीज में नहीं लेके गए थे, गवर्नमेंट के इदारों में लेके गए थे। आज वो गवर्नमेंट के इदारे जब फिर उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो भी हमारा खून जलता है। इस मुल्क में मुझे और आपको इकट्ठे रहना है। वी हैव नो चॉइस, वी कैन नॉट डाइवोर्स ईच अदर, वी कैन नॉट लीव ईच अदर, वी हैव टू लिव टूगेदर। हमारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, हम में से भी हमारी वीकनेसेस भी हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर विद आर स्ट्रेंथ्स एंड विद आर वीकनेसेस। सुनते रहिए प्रोग्राम को। इसी तरह हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ वापस आते हैं। लो जी, खबरों का वक्त हो गया। सच्ची से मुझे तो अपना बचपन याद आता है। आप मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होता था। अच्छा, हम लड़कियां क्या करती थी जब स्कूल तक, दसवीं तक तो मामलात और थे। दसवीं तक तो मामलात ये थे ना कि एक क्लास में जाके बैठे, सुबह एक टीचर आया, फिर दूसरा टीचर आया, फिर तीसरा टीचर आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, पांचवे के बाद हो जाती थी रिसेस, और फिर वो 40 मिनट 35 मिनट 40 मिनट हमने वहां गुजारे। उसके बाद फिर छठा पीरियड, सातवां, आठवां, नौवां, और नौवें पीरियड में हम अपना बिस्तरा बस्ता बुस्ता कस के, नौवें पीरियड को कोई गौर से नहीं सुना करता था, बस तैयार होती थी, बेल बजे और दौड़ना शुरू कर देना। अच्छा, जब फिर हम कॉलेज में आए तो कॉलेज में क्या होता था? अब मुझे नहीं पता लड़के क्या करते होंगे, हम लड़कियां क्या क्या करती होती थी। मैं कोई तमीजदार लड़की नहीं थी, मैं कोई तमीजदार स्टूडेंट नहीं थी, शौक था। और फिर वो मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी, जो नालायक शागिर्दों के बस्ते हमेशा भारी हुआ करते हैं। हमारा बस्ता बड़ा होता था, अम्मी कहती थी नालायक शागिर्दों के बस्ते भारी होते हैं। एक बात फिर क्या होता था, कुछ टीचर से बहुत मोहब्बत थी और उनकी क्लास में हमेशा आगे आगे रहने को दिल करता होता था। कुछ टीचर से बड़ी चिड़ थी, जैसे केमिस्ट्री की टीचर थी, सबसे पीछे बैठने को दिल किया करता था। अच्छा, जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए और फिर आगे यूनिवर्सिटी तक, फिर जब फिर क्या हुआ था, फिर पहला पीरियड हुआ, उसके बाद बेल होती थी, फिर दूसरा पीरियड किसी और ब्लॉक में होता था, तीसरा पीरियड किसी और ब्लॉक में होता था, चौथा पीरियड किसी और ब्लॉक में होता था। तो हम क्या करते थे, पीरियड खत्म होने से पहले ना ऐसे होकर बैठ जाया करते थे, आगे बस तैयार हूं, अब शूट पटनी है मैंने, ठीक है। टन 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 की आवाज आई तो जनाब हम बस्ता पकड़ के, टीचर इधर से निकलती थी, हमने ढूंढा हुआ था कि किधर से हमने निकल के भागना, भागते 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 हम दूसरी क्लास तक पहुंचा करते थे। एक अपने लिए रखा करते थे, एक सीट अपनी सहेली की रख ली, तीन कुर्सियां रख ली, कर लो बात। एक पे कॉपी रख दी, एक पे बस्ता रख दिया, एक पे किताब रख दी, ठीक। फिर जब छुट्टी हुआ करती होती थी तो भी हम भागे भागे जनाब छुट्टी मनाया करते थे। सो नालायक शागिर्द रहे, मगर गुजार ली जिंदगी, जैसे भी गुजरी, बहुत जल्दी गुजर गई, बहुत जल्दी गुजरी। एक गीत की तरफ लेके जाना चाहती हूँ मैं। हाँ ना, शाजिया जी ने खबरें पेश करनी है, मगर मैं एक गीत जरूर आपको सुनाना चाहती हूँ। गीत बहुत ही खूबसूरत है, ये पाकिस्तान का एक ड्रामा है, पाकिस्तान का एक ड्रामा है। इस ड्रामे को बहुत पजीराई इस वक्त मिल रही है। ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद, इसको फिल्माया गया है बिलाल अब्बास। ड्रामा इश्क मुर्शिद है, इसमें जो इनके साथ बिलाल के साथ रोल प्ले कर रही है दुर्रे फिशा, और भी हैं कुछ दिल के इरादे, क्या कहना। सुना इस गाने को, बड़ी पजीराई है, मगर चोरी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, अनकरीब ये गाना भी एक और धुन चोरी हो। इंजॉय द सॉन्ग।
जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमे ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया है प्यार अमल तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर तेरा मेरा है प्यार अमल पागल क्या जोगी मुझको कहो हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया मेरा है प्यार अमर जब से मिली तू दिल को लगी तेरे लिए ही मैं हूँ बना लूटा है दिल को तेरी अदा ने ये कैसा मुझ पे जादू किया मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया प्यार अमल तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर जाने बाबा ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ ای آواز ڈاٹ کام لوکل نمبر
6478724900
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਓਂਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ CNE ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਿਆ ਆਪਕੇ ਘਰ ਔਰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਰਿਨਿਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਪ ਦੁਰਸਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇ ਹੈ? ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਆਲ ਸਟੇ ਏਜੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦਸਰ ਕੋ 6472903773 ਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੋ ਕਾਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਤੇ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ $1,775 ਕੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੁਦਸਰ 6472903773 ਆਲ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਹੈ। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ।
ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 18-19 ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੋ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 1410 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤੋ ਫ੍ਰੀ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਾਮ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਲਈ truckworld.ca ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਕੁਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ 519-622-0660।
ਹੈਪੀ 50th ਬਰਥਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 70 ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਲੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਫਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/membership।
ਮੁਝੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ, ਬਿਰਯਾਨੀ, ਦਾਲ ਤੜਕਾ,
ਲਾਹੌਰੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੜਾਈ, ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਬਾਬ, ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਆਈਟਮ,
ਸ਼ਾਹੀਨ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਕਬਾਬ
ਇਨ ਫਲੈਮਿੰਗਟਨ ਮਾਲ।
اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے رابطہ کیجیے آپ کی اپنی ڈاکٹر نازیہ رحمان، لیزر ٹوتھ وائٹنگ، روٹ کینال ٹریٹمنٹ، ڈینٹل امپلانٹس،
فری ڈینٹل ٹریٹمنٹ فار کڈز، ہیلتھی اسمائلز انٹیریو کے تحت ڈینٹسٹری آن مسز ساگا، 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ، یونٹ 104، مسز ساگا روڈ اینڈ فائنینشل ڈرائیو۔
کال کیجیے ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100۔ کنسلٹیشن ایبسولیوٹلی فار فری۔ Dentistry on Mrs. Sarga.
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینیولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ canmsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
Grill in the Hut Mrs. Saga میں آرڈر وائے فون، عمران بھائی کو کال کریں۔
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383۔ Grill in the Hut۔
السلام علیکم، میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9052794754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ، مسیساگا۔
خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن۔ فلنگز، کراؤنز، بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 2997466۔
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522 302-2522 भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरी, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी आप या किसी को गिफ्ट देने के लिए यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड 9056776888 अक्रम भाई या असलम भाई से बात कीजिएगा।
जी सामने नाजरी वेलकम बैक अगेन एंड 5:16 और 2 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं और सब अब चलेंगे अपने न्यूज सेगमेंट की जाने पर। न्यूज सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है ओपन माइक कैफे ने। ओपन माइक कैफे आपको मिलता है 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट, डंडास एंड डिक्सी का मेजर इंटरसेक्शन है मिसिसागा में। और ओपन माइक कैफे पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो आपने तो साहब आप पहुंच जाइए ओपन माइक कैफे पर। 4165266800 इनका फोन नंबर है। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम बिकॉज दे हैव 2 क्लिनिक्स एंड बोथ ऑफ देम आर इन ब्रैम्पटन के इलाके में। और कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड इजी पेमेंट ऑप्शन इनके पास है। ये कहती है हमारी और आपकी अपनी डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान। डॉक्टर नाजिया रहमान का फोन नंबर है 9058721100। ग्रोसरी पे की सेल करनी है, हर एक ने ग्रोसरी लेनी है भाई, और ग्रोसरी जब लेनी है तो आप अगर ईस्ट एंड में है तो आप पहुंच जाइए बटाला सुपर मार्केट पर। हलाल मीट, हलाल चिकन वगैरह इसके साथ साथ सारी ग्रोसरी पे इन्होंने सेल लगाई हुई है। और पहुंच जाइए 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लिंडन के कॉर्नर पर। 4162643111 बटाला सुपर मार्केट का फोन नंबर है। आपने टीवी एंड अप्लायसेज चाहिए हो तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायसेज का नाम याद रखें, सुल्तान भाई यहां पर होते हैं 801 बोवेड, बोवेड एंड चिंकूजी के मेजर इंटरसेक्शन इन ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, सुल्तान भाई का फोन नंबर है 9054502828। लास्ट बट नॉट लीस्ट हेयर मैक्स के शिराज कहते हैं कि साहब आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या सुनने में कमी हो रही हो तो साहब आप एक दफा पहुंचिए हेयर मैक्स पर। 2 लोकेशन से सर्व करते हैं आप, एक टोरंटो में एक मिसिसागा में। और हेयर मैक्स के शिराज का कहना है कि अगर आप साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपका हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। और क्या चाहिए साहब आपको, एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। और चलिए साहब अब मेरे ख्याल बड़ी लंबी चौड़ी छुट्टियों के बाद पहुंची है यहां पर ये, तो हम लिए चलते हैं आपको शाजिया मलिक की जाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। यानी मौजूद भाई आप जैसे बदनाम करने वाले हो है ना तो बंदों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। वो सही कहते थे मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद लोग हैं।
अच्छा आप मेरी बात सुनिए, आप फ्राइडे को आएंगे यहाँ पर? जवाब दीजिए।
नहीं फ्राइडे को,
आप फ्राइडे को आएंगे?
नहीं फ्राइडे की तो मतलब है ईद की छुट्टी थी ना,
फ्राइडे को
ईद की छुट्टी थी और फिर उसके बाद वीकेंड था।
आपकी ईद आप ऑर्थोडॉक्स हैं?
हम ऑर्थोडॉक्स, हम हर चीज में ऑर्थोडॉक्स।
सैटरडे को आएंगे? इधर
सैटरडे संडे तो वीकेंड था,
संडे को आई
आप? वैसे भी आप मुझे संडे संडे छुट्टी देते हैं।
लंबी लंबी छुट्टियां गुजार के आप आई हैं तो चलिए आप यू लुक फ्रेश। तो
हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा देखें जरा मज भाई, मैंने तो की ना छुट्टी और आप जैसे मासूमों का जो है ना बहुत बुरा हाल हो या वीकेंड पे।
अच्छा
वो जो एक आपकी तरह की थे ना मासूम शादीशुदा क्रांची के, उनकी बेगम ने उनसे पूछ लिया उन्होंने कहा भाई आप बताएं कि ये इतने खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चों की फीसें हैं, मॉर्गेजे हैं, तो ये कैसे पूरे होंगे, आपके इसके बारे में आपकी राय क्या है? तो वो कहने लगा मेरी राय सिर्फ ऐश्वर्या राय है। मेरी सिर्फ ऐश्वर्या राय है।
जब मुझे हंसना हो मुझे बता दीजिएगा।
अच्छा अच्छा, नहीं ये जरा इंटर पिछूर किस्म की बातें है ना। जब उसने कहा मेरी ऐश्वर्या राय है तो बस फिर आप सोचो क्या हुआ, फिर आप सोचो
है? अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे
हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, दांत सारे टूटे हुए हैं, आंख फूटी हुई है। यानी आप जो हैं इतने बड़े यहाँ पे ज्ञानी बैठे हैं, आप अपने मासूमों को क्रांची वालों को क्यों नहीं सिखाते हैं मौजूद भाई, आप क्यों नहीं उनको बताते हैं ऐसी बातें नहीं करनी?
यही तो बता रहे हैं हम
बैठे,
आप बैठ के यही तो बता रहे हैं,
यही बता रहे हैं। हाँ, देखें सुनते नहीं है लोग। देखें भाई बेगम के सामने बिल्कुल नहीं कहना मेरी ऐश्वर्या राय है,
ऐसी कोई राय नहीं,
ऐसी कोई राय नहीं रखनी है आपने, सिर्फ अपनी बेगम की राय रखनी है आपने। ठीक है जी। अच्छा जनाब टोरंटो वालों, हम आपको बताना चाहते हैं कि टोरंटो के अंदर बड़ा जबरदस्त जुनून का कॉन्सर्ट आ रहा है May 4th को, तो आप लोग प्लीज उनके जो है टिकट वगैरह खरीद लें। अपना बैंड है देखे ना जुनून वाले जो है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार जनाब, और आपको शायद चांस मिल सकता है उनके साथ स्टेज पे गाने का, तो आप जरूर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, तो आप टिकट ले लें। अच्छा और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा भाषा जी। राजा भाषा जो है ऑल स्टेट में होते हैं, कहते हैं जी मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा, लेकिन पैसे कैसे बचेंगे अगर आप उनको कॉल नहीं करेंगे, है ना? तो आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, आप कॉल कर लें उनको। इनका कॉल करने का नंबर है 6472903773। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, बहुत बड़ा ये हॉल है, इसके अंदर आप तकरीबन 1400 बुला सकते हैं, और मुझे और माजिद भाई को भी बुलाना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बुला सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल है जी। इसके अंदर वो कहते हैं जी 32 रूम ये लग्जरी होटल है, और हर तरह का आप अपना फैमिली का या कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई आप जो इवेंट है वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बड़ा ही आइडली लोकेटेड है 2935 ड्री रोड मिसिसागा में, बड़ा खूबसूरत अंदर से बना हुआ है, यानी आपको अंदर से देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बिल्कुल। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कॉल कर सकते हैं अगेन एट 6479653823। और जनाब ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, दो रेस्टोरेंट्स हैं इनके, एक मिसिसागा में 4141 डिक्सी रोड पे। आप अगर यहां पे अपना इवेंट कोई करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर लें यहां पे एट 9052323663। और अगर आपने ओकविल में कराना है तो इनका जो नया रेस्टोरेंट खुला है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, वहां पे भी आप इनको कर सकते हैं अपने इवेंट्स करने के लिए या वहां जाके खाने के लिए। इनका नया नंबर है जो ओकविल का 9052262294।
Or we must say that we had a wonderful dinner last night. Wonderful dinner, and unki hospitality is amazing.
Khana bahut acha tha, logon ne bahut enjoy kiya.
Har shakhs ne khane ki beintaha tareef ki, aur uske sath sath jo hospitality thi, logon ne aake jo hame serve kiya,
comments diye aur baat ki,
absolutely amazing.
Ha, aur kuch log to wahan pe khane ke paas hi baithe hue the, ab aap samajh hi gaye honge क्योंकि आमिर बार बार आके जी कंप्लेन कर रहा था खाना खत्म है खाना खत्म है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग खाने के पास ही बैठे हुए थे
तो वहीं बैठ के
हाँ वहीं से खा रहे थे फटोफट, जैसे जैसे वो गरम गरम डाल रहे थे वो खा रहे थे, खाना गायब हो रहा था तो लोगों को
बस ये कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं थी वहां पर,
एक मिनट में
वहां पर लोग खड़े हुए थे वहां पर, और ड्रेस में जैसे ही खाने खत्म हो रहे थे वो खाने लाके डाल रहे थे, एंड खाने की कमी नहीं थी। बफे में बाज़ दफा होता ना कि कोई चीज
कमी हो जाती है, हाँ जी,
मगर इस बफे में रात के बफे में हमने कहीं कमी नहीं देखी थी, और इट वॉज छटा साहब अ वंडरफुल जॉब,
बहुत अच्छा था, वो बहुत लोगों ने जी एंजॉय का मजा लिया, बिल्कुल एंजॉय का मजा लिया। ठीक है जी, और जिन्होंने मिस किया उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है ओके। अच्छा जनाब हमारे जो जंपी टूडो साहब हैं उन्होंने आज ईरान को बहुत ज्यादा कंडेम किया है। अब ये मुझे नहीं लग रहा जो टूडो साहब जो है टूडो साहब ने जन्नत से पीछे घसीट लिया अपने पैर, अब ये जनती नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या होता जा रहा है टूडो साहब को। टूडो साहब हमारा आपके साथ इतना प्यार है, क्या कर रहे हो आप, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी बनाओ यार, क्या आप अमरीका के पीछे पीछे अंकल सैम का जो दुम छल्ला जिसको बोलते ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہو. بڑا جی انہوں نے کنڈیم کیا اوور دا ویکینڈ ایران کا جو اٹیک تھا آن اسرائیل, اور انہوں نے کہا جی کہ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں اور میں اپڈیٹس لے رہا ہوں اپنے نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ایڈوائزر چیف آف ڈیفینس اسٹاف چیف آف پریوی کاؤنسل جو ہے ان سے میں لے رہا ہوں. اس کے علاوہ جو فارن افیئرس منسٹر ہیں میلانی جولی, انہوں نے بھی کینیڈینز کو کہا کہ بھئی آپ اسرائیل اس وقت ٹریول نہ کریں, وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں فورن اپنے جو ہے تیارے وہاں سے لے کے وہاں سے نکلنے والی بات کریں. ایئر کینیڈا جو تھا اس نے اناؤنس کیا جی کہ سیٹرڈے کی جتنی بھی فلائٹس تھیں ہم نے کینسل کر دی تھی ٹو تل اویو, اور آپ کو بتائیے کہ ایئر کینیڈا 4 فلائٹس نان اسٹاپ ریٹرن فلائٹس جو ہے پر ویک وہ کرتا ہے ٹورنٹو اور تل اویو کے بیچ میں آپریٹ, وہ بھی اس نے بند کر دیا تھا. تو اب پتا چل رہا ہے کہ شاید آج سے وہ پھر سے شروع کریں. بارا جی ٹروڈو صاحب نے اس چیز کا بڑا برا منایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل صحیح نہیں ہے. پایا نا آپ کو شاید پتا نہیں ہے, آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل نے ڈمسکس میں جو ایران کی ایمبیسی تھی اس کے اوپر اٹیک کر کے ان کے 13 بندے مارے ہیں. یہ ریٹیلیشن تھی بھائی جان, یہ ریٹیلیشن میں ایران نے کیا تھا. شاید آپ کے انٹیلیجنس والے جو ہیں وہ سو رہے ہوں گے, ویکینڈ تھا نا تو اس لیے وہ سو رہے ہوں گے, ان کو پتا نہیں تھا. تو ان سے پلیز پوچھو کہ یہ کیوں انہوں نے یہ ریئیکشن اتنا زیادہ کیوں شو کیا ہے. تو وہ شو اسی لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ان کے یا یو ایس نے ان کے بندے مارے ہیں. اس سے پہلے بھی اگر ہم آپ کو پوری یہاں پہ کہانی قاسم سلیمانی کی اور باقیوں کو بتا چکے ہیں کہ ان کو انہوں نے مارا ہے, اور ایران نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ابھی جواب نہیں دے رہے, ہم اپنی مرضی پہ جواب دیں گے. تو یہ بھی جو اٹیک تھا یہ کنڈیم آپ نے تو فٹافٹ ایران کو کر دیا ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ تھا کہ ان کی جو ڈمسکس میں ایمبیسی تھی اس کے اوپر جو اٹیک کیا تھا اسرائیل نے اس میں ان کے جو 13 بندے مرے تھے, اور انہوں نے اسی وقت ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو پائن ذرا اپنی تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں, تھوڑا ریوائز کر لیا کریں اپنے آپ کو, ضروری نہیں ہے کہ جو انکل سیم نے کہا وہی آپ نے بھی کہنا ہے. اچھا جناب کل آنے والا ہے ہمارا فیڈرل بجٹ, اور وہ ٹیکسز آ رہے ہیں, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جی اور ٹیکسز آ رہے ہیں اس کے اندر. ہماری جو کرسٹیا فری لینڈ ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر اور منسٹر آف فائنینس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم جو ہے ویسے تو اس کے اندر کوئی بھی نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے, اور بار 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 انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکسز نہیں لگائیں گے. لیکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جتنے زیادہ پرومسز کر لیے ہیں ٹروڈو صاحب نے کہ ہم یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے, ان سارے پرومسز کو جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے بجٹ آنے سے پہلے, وہ تقریباً 38 بلین ڈالرز بنتا ہے. تو وہ 38 بلین وہ کیسے نکالیں گے اور کہاں سے نکالیں گے؟ تو ان سب کو میٹ کرنے کے لیے ان کو نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے, لگانے پڑیں گے نئے ٹیکسز. اور ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا جی کہ اگر لبرل گورنمنٹ نے بڑی ہوشیاری دکھائی اور انہوں نے کہا جی او جیسے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں مڈل کلاس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے, تو اگر انہوں نے ہائی انکم ٹیکس لوگوں کو جو ہے وہ ہائی ارننگ جو انڈیویجلس کے اوپر ٹیکس اگر لگایا تو اس دفعہ جو ہے وہ لوگ سارے کا سارا اپنا پیسہ جو ہے آف شور شفٹ کر دیں گے, اور یہاں پہ آپ کے بینکوں میں شو کریں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں, زیرو ان کا بیلنس ہوئے گا بینکوں کے اندر.
ایسا بھی کر دیں گے ان کو, ان پہ بھی آنکھیں ہیں, مگر آف کورس اپوزیشن جو ہے اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو بھی کچھ کام دینا پڑتا ہے نا, تو اس لیے تھوڑے سے ٹیکسز ڈالیں گے وہ تاکہ ان کو بھی
تھوڑا موقع ملے کریٹیسائز کرنے کا.
آف کورس یس.
اچھا ٹھیک ہے, تو میرا مشورہ ہے پائن آپ کو, آپ کی اپوزیشن بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کو ٹیکسز بھی نہیں لگانے پڑیں گے. یہ جو یوکرین کو آپ بلینز آف ڈالرز دے رہے ہیں نا پائن, یہ آپ دینا چھوڑ دیں, اب بہت آپ نے بہت مہربانی کر لی ہے, اب وہ دینا چھوڑیں. ہم جیسے غریبوں کے اوپر تھوڑا نظر کرو, ہم کو صرف 1 ملین ڈالر چاہیے, ہمارے پہ نظر کرو ٹروڈو صاحب. ہیں ہم بہت دعائیں دیں گے, ہمارے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے. تو ایسا ہے بارا جی, نئے ٹیکسز آ سکتے ہیں تو پلیز آپ سوچ لیں اس میں, ٹھیک ہے, ساودھان رہیں یعنی کہ. اور جناب فرسٹ انسٹالمنٹ آف 2024 کینیڈا کاربن ریبیٹ جو ہے, کاربن ٹیکس کا جو ریبیٹ ہے وہ آج سے کچھ لوگوں کو آنا شروع ہو گیا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ البرٹا ساسکیچوان مینیٹوبا اور اونٹاریو میں رہتے ہیں, اور 4 اٹلانٹک پروونسز جو ہیں اس میں ان کو یہ کاربن ٹیکس ریبیٹس جو ہیں یہ اب 4 انسٹالمنٹس میں آئیں گے, جس کی یہ پہلی انسٹالمنٹ ہے آج, جنہوں نے کہ فائل کیے تھے اپنے ٹیکسز 2023 کے مارچ 15 تک, ان کو آ جائیں گے. جو آج فار ایگزامپل یا آج کے بعد اگر اپنے ٹیکسز بھر رہے ہیں تو ان کو مے 15 یا جون یا جولائی میں جو ہے وہ آنے شروع ہوئیں گے یہ سارے ریبیٹس. یعنی کہ ایک سمپل آپ کو ہم بتا دیں کیلکولیشن کہ اب فیملی آف 4 جو ہے اس کو جیسے 190 ڈالرز نیو برنزوک میں مل سکتا ہے, 450 ڈالرز البرٹا میں بن سکتا ہے, اور اسی طرح جو ہے آنٹیریو کے اندر بھی سم وٹ سملر اماؤنٹ آپ لوگوں کو مل سکتی ہے, تو آپ نے دیکھنا. لیکن لوگ جو ہیں جن کو کہ آج آئے ہیں فار ایگزامپل, ان سے جب میڈیا نے بات کی تو ان کو بڑی کنفیوژن हुई, उनके बैंक्स में पैसे आए कैसे, ईएफटी डिपॉजिट फ्रॉम कनाडा। अब उनको समझ नहीं आई कि ये ईएफटी डिपॉजिट क्या है, इसी तरह ईएफटी क्रेडिट कनाडा ऐसे करके आए।
इलेक्ट्रॉनिक टैक्स,
हाँ टैक्स है। अब उन्होंने जाकर बैंकों से पूछा तो बैंकों ने कहा जी कि हाँ अभी तक हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये जो रिबेट्स आने हैं उसके टाइटल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो कुछ शायद, लेकिन वो कहते हैं जी बैंक टू बैंक जो है वो भी डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है, कुछ बैंक जो है वो तो पूरे का पूरा लिख रहे हैं कैनेडा कार्बन रिबेट, दूसरे लोग जो है वो लिख रहे हैं सीडीए कार्बन रिबेट, कोई लिख रहा है कनाडा सीसीआर, कोई लिख रहा है कनाडा आरसीसी, और जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच में लोगों को आए हैं वो लिखा हुआ है कैल्बन रेमीस सीए। तो ये जो है इस तरह आई है, लेकिन बहरहाल इसका एक प्रॉपर नाम अब आएगा, शायद ये प्रपोज करेगी गवर्नमेंट,
कार्बन रिबेट टैक्स।
हाँ कार्बन रिबेट टैक्स, तो इस तरह करके सिंपल होएगा तो लोगों के लिए ज्यादा समझना भी आसान।
जो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर है उन्होंने आज अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 80% ऑफ कैनेडियंस जो है ना दे आर गेटिंग बैक मोर मनी व्हाट दे वर गोइंग टू
पे इन कार्बन टैक्सिंग। जी जी बिल्कुल ठीक है। और जनाब ऑन्टेरियो ने आज बहुत बड़ी मेजर अनाउंसमेंट की है, प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो है उन्होंने कहा जी कि वी आर एडिंग 300 न्यू वीकली गो ट्रांजिट ट्रिप्स बाय मंथ एंड। मेट्रोलिंक्स जो है उसने कहा जी कि ये जो हमारी गो ट्रेन सर्विस की हिस्ट्री है उसमें बिगेस्ट एनहांसमेंट आ रही है सिंस 2013, और वो कहते हैं जी कि ये चेंज ये शो करती है कि हर 15 मिनट्स में फॉर एग्जांपल वीकेंड के ऊपर जो है सर्विस ये जारी रहेगी इन पार्ट्स ऑफ लेक शोर रोड वेस्ट एंड जो ईस्टर्न साइड की लाइन है उसके ऊपर। इसके अलावा एडिशनल ट्रेन जो है एड की जा रही है, यानी कि रूट्स जो है वो एड किए जा रहे हैं ऑन किचनर स्टूफविल मिल्टन लाइन्स के ऊपर भी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 28। ये जो आज प्रीमियर साहब ने अनाउंसमेंट की है ये मिल्टन के अंदर थे और इनके साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रवनीत सरकारिया भी थे। उन्होंने कहा जी कि दिस इज 15% इंक्रीज इन गो सर्विस,
लार्जेस्ट इंक्रीज।
जी लार्जेस्ट इंक्रीज बिल्कुल, हाँ जी सिंस 2013। तो वो कहते हैं जी कि ये
ऑन द अदर हैंड आप देखिए ना वो जो लोकल लिबरल्स हैं प्रोविंशियल लिबरल्स उनका कहना है कि ये तो डिमांड मॉनी क्रॉम्बी बड़े सालों से कर रही थी और अब जब वो प्रोविंशियल 2 मई को है ना
जी 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 जी
वहां पर मिल्टन में जो बाय इलेक्शन होने वाला है तो उस बाय इलेक्शन की वजह से इन्होंने यू वांटेड टू टेक एडवांटेज एंड ये अनाउंसमेंट किया है
और वो भी मिल्टन में ही
किया है। तो दैट्स समथिंग टू लुक एट इट
लेकिन मतलब 300 न्यू वीकली रूट्स इट्स नॉट इजी। और ये भी नहीं हो सकता कि चूंकि वहां पे जो है वो बाय इलेक्शन आने वाले हैं तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उनको एक दिन याद आई कि वो ये हमको करना है,
प्लानिंग होगी,
नीड्स अ लॉट ऑफ यू नो इनिशिएशन, अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ यू नो वो राउंड ऑफ टॉक्स विद लोगों को फायदा है, लोगों को फायदा है, हाँ लोगों को फायदा होगा इससे। हाँ जी बिल्कुल यही है। अच्छा जी, अच्छा जनाब यूनियन रिप्रेजेंटिंग अबाउट 10,000 ट्रांजिट वर्कर्स इन ट्रोनो जो है वो कह रहे हैं जी कि अब हम जो है टीटीसी के अगेंस्ट जो है वो चलेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे क्योंकि हमारे जो टॉक्स हैं वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एटीयू लोकल 113 जो है उसने कहा है जी कि हमने जो लेबर मिनिस्ट्री है उसको हमने कहा है कि एक काउंसलर जो है हमारे लिए अपॉइंट करे ताकि ये हमारे टॉक्स आगे लेके जा सके क्योंकि मेरे हमारी आपकी जो टॉक्स हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। वो कहते हैं जी हम वीक्स एंड वीक्स एंड वीक्स से ट्राई कर रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए जाएं और हमारी प्रायोरिटीज को ख्याल में रखा जाए, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे वेजेस बढ़ाओ, बेनिफिट्स बढ़ाओ क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूनियन जो है वो कहती है जी कि हम अपनी पूरी तरह से सारी सर्विसेज विदड्रॉ कर लेंगी अगर हमारी बातें जो है आने वाले दिनों में ना मानी गई। एक और ग्रुप जो है टीटीसी वर्कर्स का उसने भी कहा जी कि वो एज सून एज नेक्स्ट वीक जो है वो उस पे जा सकता है
स्ट्राइक पे।
जी ये जो ग्रुप है ये क्यूब लोकल 2 है, ये वो पहला वाला जो है वो तो है एटीयू लोकल 113 और ये वाला जो है क्यूब लोकल 2 इसने कहा जी अप्रैल 22 से हम भी जा सकते हैं। और ये लोग जो है 661 इलेक्ट्रिकल ट्रेड वर्कर्स हैं एट टीटीसी। वो जो पहले वाले हैं एटीयू लोकल 113 वो 10,000 ट्रांजिट वर्कर्स हैं, ये जो है ये 661 इलेक्ट्रिक एंड ट्रेड वर्कर्स हैं। तो ये कहते हैं जी कि हम भी जा सकते हैं, तो पायान फिर सारा ठप ही हो जाएगा।
इलेक्ट्रिकल वर्कर्स जो है तो उनका तो आप देखें ना कि फॉर लास्ट 2 ईयर्स दे डोंट हैव नो कॉन्ट्रैक्ट,
ये इनका भी है। वो कहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं कर रहे हैं,
रिन्यू नहीं,
हाँ रिन्यू नहीं कर रहे हैं, यही है। और जनाब यॉर्क यूनिवर्सिटी में पिछले 7 वीक्स से स्ट्राइक चल रही थी और यहां पे जितने भी तकरीबन 3000 जो एकेडमिक वर्कर्स थे फरवरी के एंड पे दे वॉक्ड ऑफ जॉब, लेकिन अब लग रहा है कि टेंटेटिव अग्रीमेंट इनका हो गया है। क्यूब लोकल 3903 ये जो हैं ये कह रहे थे कि जी इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं इनके साथ गवर्नमेंट के साथ कुछ डील हो गई है यूनियन की, और वो कहते हैं जी कि ये जो ज्यादातर चीजें थी ये रिलेटेड थी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अगेन कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी जो थी उसकी, टीचिंग ग्रेजुएट इन असिस्टेंट्स रिसर्च असिस्टेंट्स पार्ट टाइम लाइब्रेरियंस, और ये स्ट्राइक कर रहे थे फरवरी 26 से। इन्होंने इसकी वजह से तमाम के तमाम जो कोर्सेज भी थे बच्चों के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के वो इन्होंने सस्पेंड किए थे और बच्चे जो थे बिल्कुल ही घर पे बैठे हुए थे, कुछ पढ़ाई नहीं इनकी चल रही थी। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि हमारा कुछ अग्रीमेंट आ गया, डिटेल्स अभी तक इस अग्रीमेंट की सामने नहीं आई है क्योंकि यूनियन कहती है जी कि अभी तक इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है उसको, तो जब वो करेंगे तो फिर हम डील सारी की सारी आपके सामने लेकर आएंगे। अलबत्ता हम इनको कह रहे थे कि जो हमारे जॉब सिक्योरिटी इक्वालिटी अफोर्डेबिलिटी और ये सारी जो चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट की इनको आप जिस वक्त तक देखेंगे और पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आप फिर आगे नहीं चलेंगे। महाराज जी इसके बीच में बच्चों का बेतहाशा नुकसान हो गया और पता नहीं आप ये समर में क्लासेस लेके बच्चों को प्रॉपरली ग्रेड्स देंगे या नहीं देंगे, तो अब ये देखना जो है वो रहता है। यूएस जो है जी उसने आज कहा है जी कि ये जो बहुत सारे ये जो ईरान ने मिसाइल्स मारे थे इसराइल के ऊपर, इसमें से हमने भी डजन्स ऑफ ड्रोन्स एंड एटलीस्ट 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे इसराइल की तरफ आ रहे थे ईरान से और यमन से, उनको हमने इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया और उसको इसराइल के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया गया। आपको पता ही है कि जो इसराइल है उसने ऑलरेडी जो है अपना डिफेंस डोम जो है वो अपने ऊपर लगाया हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट उसको हिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूएस फोर्सेज जो है वो कहती हैं जी कि 81 वे अटैक ड्रोन्स इंक्लूडिंग 7 UAVs जो कि टारगेट कर रहे थे उनको हमने जो है हवा में या कुछ स्पेस दूसरी जो थी उसके अंदर हमने डिस्ट्रॉय किया था। इसकी डिटेल्स जो है सेंटकॉम जो है उसने भी अपनी एक्स के ऊपर दी थी। उन्होंने कहा जी कि ये ईरान जो है ये सारे इलाके को बहुत इनस्टेबल कर रहा है और बड़ा ही इसका डेंजरस किस्म का बिहेवियर है। वाजी वाह पाया जान, यानी कि 35,000 बंदा जो है वो इसराइल ने मार देता है तो ईरान जो है वो इराके के अंदर खतरा पैदा किया है। वाजी वाह क्या बात है, तालियां आपके लिए, तो खड़े होकर आपको बजानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो वो कहते हैं जी कि हमने अपने रीजनल पार्टनर्स जो है उनके साथ मिलकर ये सारा कुछ किया था। जाहिर है जी आपके रीजनल पार्टनर्स अगर आपके बूट चाटने वाले हों तो फिर जाहिर है वो ऐसे ही होगा। ईरान जो है जी उसने पहला ये जो अटैक है ये इसराइल के ऊपर किया था, एंड ऑफ कोर्स इन रिटेलिएशन ऑफ जो इन्होंने अटैक किया था इसराइल ने उनकी एम्बेसी पे सीरिया के अंदर जिसमें 13 बंदे मर गए थे उसका जवाब था। हिजबुल्ला ने कहा जी कि हमने भी कट्यूशका जो रॉकेट्स हैं वो इसराइल के ऊपर मारे हैं क्योंकि सदर्न लेबनान के ऊपर इसराइल जो है बेताशा अटैक्स कर रहा है। इसराइली मिलिट्री ने कहा कि जो 40 ये जो लॉन्चर्स आए थे लेबनान से इनको ज्यादातर इंटरसेप्ट किया गया और बाकी के जो थे वो जाके ओपन एरियाज के अंदर गिरे। इसराइल ने कहा जी कि कोई हमारी इंजरीज नहीं हुई है। जब ये ईरान ने अटैक किया था तो जॉर्डन इराक और लेबनान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी जिसकी की वजह से जाहिर है कि वहां पे अब मिसल्स जो है वो नहीं जा सकते थे इसराइल की तरफ। बहरहाल आज खबर आई है कि जी इन तीनों कंट्रीज ने जो अपनी एयर स्पेस खोल दी है, लेकिन अब इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल 2-3 जो है वो बातें आ रही हैं। वो बातें क्या आ रही हैं कि जो टर्किश जॉर्डेनियन और इराकी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आज कहा है जी कि ईरान ने 72 आवर्स पहले ही यूएस को बता दिया था कि हम इसराइल पर अटैक करने लगे हैं। यूएस जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो डिनाई कर रहा है, वो कहता नहीं ईरान झूठ बोल रहा है उन्होंने बताया। अब ये तीन कंट्रीज इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं और यूएसए जो है वो सच बोल रहा है, क्योंकि आज जो मीडिया ने इंटरव्यूज लिए हैं इनके ऑफिशियल्स के टर्किश जॉर्डेनियन और इराकी ऑफिशियल्स के, उन्होंने कहा जी हां बिल्कुल ईरान ने इनको बताया था यूएस को कि हम इसराइल के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक करने लगे हैं। यूएस कहता है जी हमें तो कोई पता ही नहीं है इसके बारे में, हमें कोई नहीं उन्होंने बताया। उन पायन व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अंकल सैम मानने को तैयार नहीं है। अंकल सैम क्या कर रहे हो, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करो है जी ऐसे। अच्छा जनाब बाइडन साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ये जो ईरान का अटैक था इसराइल के ऊपर उसको बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि हमारी आयरन क्लैड सपोर्ट जो है इसराइल के साथ रहेगी। और फिर उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू साहब को फोन भी किया, हालांकि वो ये ज्यादा उनकी कुछ ज्यादा आजकल बंद ही रही है नतन्याहू साहब के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि अमरीका ने कहा था कि भई आप सीज फायर की तरफ जाएं और नतन्याहू साहब ने उनको साफ ना कह दिया था। इसके अलावा जो है बाइडन साहब कह रहे हैं कि मैं G7 के लीडर्स की एक मीटिंग भी कन्वीन करने वाला हूं, जिसमें कि ये जो ईरान ने इतना खतरे में नाक अटैक किया है और रीजनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला है, उस सिचुएशन पे बात करने के लिए हम सबको बुला रहे हैं। बाइडन साहब जो थे अपने डेलावेयर ट्रिप के ऊपर थे, जो कि उन्होंने छोटा किया, और ये वापस आए अपने एडवाइजर्स को मिलने के लिए जिस वक्त सैटरडे नाइट ये अटैक हुआ था। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूएस फोर्सेस जो है उन्होंने वो कहते हैं जी कि कोई भी हमारी जो फैसिलिटीज थी रीजन के अंदर वो हिट नहीं हुई हैं, और यूएस ने हेल्प भी किया है इसराइल का टू टेक डाउन ऑल दीज ड्रोन्स एंड मिसल्स। वो कहते हैं जी नतन्याहू साहब के मैंने बाइडन साहब वो कहते हैं जी मैंने नतन्याहू साहब को कहा है कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, आपको राइट है टू डिफेंड योरसेल्फ, और आपने सही इनको जवाब दिया है, और ये जो अटैक्स थे ईरान की तरफ से ये बिल्कुल ठीक नहीं थे, ये आपकी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे थे। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। इसके अलावा जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं बहुत सारी, उन्होंने भी आज इरानियन एम्बेसडर्स जो उनके कंट्रीज में हैं उनको बुलाया और उनको ये जो अटैक किया है ईरान ने इसराइल के ऊपर उसको कंडेम किया। और ईरान जो था उसने जो है पहले ही कहा था कि हम, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम अटैक करेंगे, और उन्होंने कहा था जी कि ये अटैक हमारा रिटेलिएटरी अटैक है, और ये जो ज़ायनिस्ट रिजीम है और इसके सपोर्टर्स जो हैं ये एक बहुत ही रेकलेस बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं, और इसका जो है हम बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स देंगे। ईरानियन मिलिट्री चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी जो है उन्होंने कहा कि ईरानियन अटैक जो था इसराइल पे उसने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो हम इसलिए ऑपरेशन को एंड कर रहे हैं, हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इसके अलावा भी हम रीजन के अंदर इनस्टेबिलिटी नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन हूं इसराइल नू ते कोई कुछ कह ही नहीं रहा, सदर लेबनान पे वो अटैक्स कर रहे हैं, अब वो ईरान के साथ भी पंगे ले रहे हैं, तो मतलब है व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है मैयद भाई, यू टेल मी क्या हो रहा है ये, है जी ऐसे। अच्छा जनाब, सिडनी के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया में तो जो है बैक टू बैक बड़ी खतरे में नाक चीजें चल रही हैं। आज भी 6 लोगों को स्टैब किया गया क्राइस्ट द गुड शेपर्ड चर्च के अंदर वैकली में, जो कि सिडनी के अंदर है, और ये जो अटैक आज का है दिस इज जस्ट 2 डेज आफ्टर ये जो वेस्ट फील्ड बॉन्डी जंक्शन शॉपिंग सेंटर था वहां पर जो अटैक किया गया था। इसके अंदर जो है ये जो अब जो अटैक हुआ है नया, इसके अंदर जो 6 लोगों को स्टैब किया, इसमें 5 औरतें थीं और 1 आदमी था, और 1 आदमी वो जो थे वो बिशप थे मार मारी इमैनुएल, और ये जो हैं उधर अपना सर्मन दे रहे थे तकरीबन शाम 7 बजे के पास, जो कि ये लाइव इसकी सर्विस भी चल रही थी, तो सिर्फ वहां पे नहीं लोगों ने देखा कि इस आदमी ने 5 दफा बिशप के हेड के ऊपर जो है नाइफ से हमला किया है, बल्कि बाकी सारी दुनिया भी जहां पे कि ये लाइव कास्ट किया जा टेलीकास्ट किया जा रहा था वहां पे उन्होंने देखा। सस्पेक्ट जो है वो इधर अल्टर के ऊपर आया और उसने जो है अपनी छुरी से अटैक बिशप को भी किया और बाकी लोगों को भी किया, और ये जो है अपनी सर्विस दे रहे थे। मीडिया के मुताबिक जो है ये जो 2 इवेंट्स हैं, एक तो वेस्टफील्ड बॉन्डी जंक्शन शॉपिंग मॉल का और ये जो चर्च के अंदर हुआ है, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है हम इसको टेररिज्म तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और जनाब दुनिया के अंदर बहुत सारी फ्लडिंग आ रही है, तकरीबन 15 लोगों की डेथ हो चुकी है और 2 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, क्योंकि सेंट्रल इंडोनेशिया जो है वहां पे आए हो रहे हैं, बहुत सारी फ्लडिंग चल रही है। 17 के करीब लोग जो हैं जो इधर ताना तोराजा के एरिया में था, सदर सुलेवेसी जो प्रोविंस है उसमें, वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया है। इसके अलावा जो है अफगानिस्तान के अंदर भी जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं हैवी रेन की वजह से, 3 दिन में उसमें 33 लोगों की डेथ हुई है। ये ज्यादातर कैजुअलिटीज जो है ये घरों की छतें गिरने से हुआ है। 600 के करीब होम्स जो थे वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हुए हैं। 200 लाइव स्टॉक जो है वो मर गया है। 600 किलोमीटर ऑफ रोड जो है वो खत्म हो गई है। 800 हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पूरी फ्लडेड है। 20 of 34 प्रोविंसेस जो है अफगानिस्तान के वो हैवी रेन के अंडर हैं, और ज्यादातर नुकसान जो है वो आया है वेस्टर्न फरा, हिरात, सदर्न जाबुल और कंधार में। इसके साथ साथ जी तंजानिया के अंदर भी बेताजा फ्लड्स आए हुए हैं, उसकी वजह से तकरीबन कोई 250-300 के करीब लोगों की जो है वो डेथ्स हो चुकी है। तो काफी जो है ये फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं। और जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स, और वो कहते हैं जी कि यहां पे काफी सारे जो हैं आपके मसले हम हल कर सकते हैं अगर आप हमको फोन कर लें मलिक लॉ ऑफिस में। मोहम्मद अतीक मलिक साहब यहां पे होते हैं, इनका नंबर है 9052914455। और जनाब सुल्तान भाई आपको पता ही है कि ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं, बड़े प्यारे इनके पास अप्लायंसेस हैं, खासतौर पर जो शैम्पेन कलर की हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको अरफा बाजी के तरह के वो एमरल्ड ग्रीन लेने हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये दे आर लोकेटेड एट 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन में और इनका नंबर है 9054502828। ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लेने वाले हैं कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम काटेंगे और खास तौर पे जो है ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा शिफ्ट है कोल रन पावर प्लांट्स में इसमें लोकल कोल इस्तेमाल की जाए, बाहर से ना मंगवाई जाए क्योंकि उसकी वजह से बेतहाशा जो है ये एक्सपेंसिव हो जाता है। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा मैंने ये भी डायरेक्टिव दिया है कि आम लोग जो हैं उनके लिए जो पावर प्राइस है वो 2 रूपीज पर यूनिट से कम की जाए और नेक्स्ट ईरा के अंदर हम जो है क्लीन कॉस्ट इफेक्टिव और रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जो है वो सेटअप करेंगे पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जब हम जो है वो सस्ती बिजली देंगे तभी हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होएगी और उसके लिए हम जो है ग्रिड स्टेशंस हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे बिग इंडस्ट्रियल एरियाज में। और उन्होंने कहा जी कि ये जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं जो कि डिसफंक्शनल अब हो चुकी हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने आप को फंक्शनल करें ताकि बिजली की को पैदा किया जा सके और ये जो यूनिट पर यूनिट बिजली जो है इसकी प्राइस नीचे लाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करेंगे कि सर्कुलर डेट जो है उसको कम करें और पावर सेक्टर के अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आएं ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आज ये मीटिंग कर रहे थे, हेड कर रहे थे अपनी कैबिनेट की जिसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें की। आपको पता ही हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं सऊदी अरेबिया गए हुए थे जहां पे उनकी मुलाकातें जो हैं मोहम्मद बिन सलमान से हुई थी और इन्होंने कहा था कि हम ऐसे ही दोस्ती बढ़ाए रखेंगे। उसी सिलसिले में आज जो सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान अल अब्दुल्ला वो पाकिस्तान में पहुंचे हुए थे 2 दिन के दौरे पे और उनकी मुलाकातें जो हैं फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ हुई हैं। उनके साथ साथ वहां पे सऊदी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी वो भी थे और दूसरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। इसके साथ ही जनाब इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो हैं वो भी April 22 को 2-day ट्रिप पे पाकिस्तान आ रहे हैं अमिड ऑल दीज टेंशन that are going on in the रीजन। और रईसी साहब जो हैं उनको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। प्रेसिडेंट जरदारी जो है रईसी साहब के ऑनर में एक बैंक्वेट देंगे और ये लोग जो हैं कोऑपरेशन जो है वो ट्रेड और जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बात करते हुए किया बताया है, डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब आजकल पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है हम उसको कंप्लीट करेंगे, हमारी बिल्कुल कमिटमेंट है ईरान के साथ। एक टीवी शो में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि हमारी पाकिस्तान की साइड की जो गवादर तक पाइपलाइन हमने बिछानी है टू इरानियन बॉर्डर तो वो हम बिछाएंगे और बाकी की जो है ईरान की साइड की ईरान बिछाएगा। तो उनसे पूछा गया कि भाई इसके ऊपर तो अमरीका ने बड़ा नाखुशी का इजहार किया है तो उन्होंने कहा जी हम अपनी साइड की पाइपलाइन कर रहे हैं तो हम जो है उसको आगे लेके जाएंगे क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि अगर पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट पूरा ना किया तो उसको बहुत सख्त पेनल्टीज पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान देखो तो इस वेले जनाब जहर खाने का पैसा नहीं है तो वो पेनल्टी के पैसे कहां देगा है जी। तो इसलिए उन्होंने बेटर यही समझा कि पाइपलाइन ही बिछा लो, कोई बात नहीं, अब क्या करेगा अमरीका ज्यादा से ज्यादा जो ऑलरेडी जो बुरा कर चुका है तो इससे ज्यादा क्या करेगा। MQMP जो है जी उसने आज फिर से धमकी दी है PPP गवर्नमेंट को कि अगर कराची के अंदर क्राइम्स नीचे ना आए तो हम जो है मोर्चे निकालेंगे, यानी कि हम जो है स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में बात कर रहे थे MQMP के लीडर अली खुर्शीदी और उनके साथ दूसरे लीडर्स थे। उन्होंने कहा जी कि हमने ये आवाज उठाई है सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में भी कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिंस जनवरी 1, 2024 59 पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, 200 के करीब इंजरीज आई हैं क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे थे रॉबरी को और 6780 क्राइम्स जो हैं कराची में सिर्फ रमदान के महीने में हुए हैं। 20 व्हीकल्स छीनी गई थी, 130 स्टील की गई थी, इसके अलावा 830 मोटरसाइकिल्स जो थे वो छीने थे और 4200 जो हैं वो स्टील किए थे। तो MQMP ने कहा जी कि हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि इसको खत्म करो स्ट्रीट क्राइम को कराची में, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। तो अगर अब और कुछ दिनों में नहीं किया तो हम इस लॉ एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इसके ऊपर हम जो है वो जलसे जुलूस जो है वो निकालेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है आमिर सरफराज तंबा के ऊपर, जिसने के अलेजली जिसके बारे में कहा गया था कि उसने इंडियन टेररिस्ट सरजीत सिंह को 2013 में मार दिया था, तो ये सारे का सारा जो है इंडिया की तरफ फिर से इशारे करता है कि इंडिया इस अटैक के अंदर भी इन्वॉल्व था। आज वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे एट एफआईए ऑफिस इन लाहौर और उन्होंने कहा जी कि पुलिस अभी अपनी प्रोब कर रही है तो मैं कंक्लूसिवली तो नहीं कह सकता कि वाकई इंडिया ने ये किया है क्योंकि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इशारे जो है वो सारे इंडिया की तरफ मिलते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो यूज किया गया। आपको बताइए कि अप्रैल 2013 में तंबा और मुदस्सर मुनीर जो थे उनको अलेजली कहा गया था कि उन्होंने अटैक किया था सरबजीत सिंह के ऊपर ब्रिक्स और आयरन रॉड से कोट लखपत जेल के अंदर और फिर उसकी डेथ हो गई थी। ये जो था सरबजीत सिंह इसको सेंटेंस दी गई थी टू डेथ दी गई थी क्योंकि इसने एक सीरीज ऑफ बॉम्ब अटैक्स किए थे जिसमें कि लाहौर फैसलाबाद में तकरीबन 14 के करीब लोग 1990 में मरे थे और फिर इसको पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है पाकिस्तान की उन्होंने पकड़ा था। ऑन डिसम्बर 14, 2018 सेशंस कोर्ट लाहौर में जो थी उन्होंने इन दोनों को मुदस्सर और तंबा दोनों को जो एक्विट किया था इस केस में और ऑर्डर दिया था इनके रिलीज का। तंबा जो कि 45 ईयर्स का था अनमैरिड था और अपने भाइयों के साथ रहता था एक 5 मरले के मकान में इस्लामपुरा लाहौर में और कहा जाता है कि ये जो है ये स्पाइस डीलर था यानी कि ये जो मसाले होते हैं इनको बेचता था। तो ये आज जी प्रोब बिठाई है। बहरहाल जी इंडिया में इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार है बल्कि अगर आपने आज नया देखा होगा एक्स के ऊपर ट्रेंड तो रणदीप हुडा साहब ने कहा है कि सर्व्ड हिम राइट और कर्मा केम बैक और इस तरह की बातें कि जो कुछ उसने सरबजीत के साथ किया वो उसके सामने आया। आपको पता ही है कि रणदीप हुडा ने एक जो मूवी आई थी सरबजीत के ऊपर उसके ऊपर में काम भी किया था तो जाहिर है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। और जनाब मतलब ये जरा पुट्टो खानदान है सिर्फ जनाब थोड़े से रूल करना आया बाकी तुम सारे कमी कमीन हो। आज जनाब आसिफ आप भुट्टो ते जरदारी भी है जी सारा कुछ ही। शी वॉज सोर्न इन एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और इस सेशन के अंदर काफी जो है शोर वोर मचता रहा। जाहिर है कि ऑपोजिशन जो है वो खुश नहीं थी इससे। शी वॉज इलेक्टेड अनअपोज फ्रॉम NA 207 शहीद बेनजीराबाद जो कि पहले नवाबशाह हुआ करता था और ये सीट जो थी वकेट की थी इनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी ने जब उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये आज पार्लियामेंट में अपने भाई बीबी जरदारी के साथ आई थी। इनका ओथ जो था नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने लिया था। जाहिर है कि पीटीआई के एमएनए शोर मचाते रहे और हूट करते रहे और उसके ऊपर फिर ट्रेजरी बेंचेस के जो थे मेंबर्स उन्होंने प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। पीटीआई ने कहा जी कि NA 207 से गुलाम मुस्तफा रिंद को हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था लेकिन उसको सकरंद पुलिस ने अरेस्ट करके छुपा दिया था ताकि वो जिस वक्त तक इलेक्शंस नहीं हो जाते यानी कि जिस वक्त तक नॉमिनेशन नहीं हो जाती उस वक्त तक इसको नहीं छोड़ा तो ये बिल्कुल गलत है। पीपीपी ने इसको हिस्टोरिक मोमेंट कहा। जी जाहिर है भाईजान तुम सारे थे रूल करन आए हो ना साढ़े होते क्योंकि आपको तो अल्लाह ताला ने खास किस्म की एक वो दी है ना कि भई आप पाकिस्तान पे जाके रूल करो बस बाकी किसी को अपने रूल का जो है वो देना नहीं है। मोहतरमा से पूछा जाए कि भई आपकी क्या स्ट्रगल है और आपने क्या किया मुल्क के लिए। मुल्क के लिए तो खैर किसी ने भी भुट्टो साहब से लेके अब तक किसी ने पता नहीं क्या तीर मारे हमें तो नहीं वो नजर आए लेकिन बहरहाल जी आसिफ अली जरदारी साहब को ही देख लें। ड्रोन के हमले पाकिस्तान में होते थे तो कहते थे जी कोई बात नहीं होने दो कोलेटरल डैमेज होता है तो नो प्रॉब्लम और खुली छुट्टी दी हुई थी अमेरिकन को ड्रोन हमले करते थे। बेनजीर साहब ने पता नहीं क्या प्लान्स बनाए क्या चलाए अल्लाह उनकी मगफरत करे पता नहीं क्या मुल्क में उन्होंने किया वो भी कोई नजर नहीं आया खास और अब उनके बेटे भी अब आ गए हैं तो अब बेटी साहबा भी आ गए हैं तो पता नहीं अब और क्या उन्होंने तीर मारने हैं तो पता नहीं क्यों जो है इनको हर चीज में घुसाया जा रहा है। और तो लगता है पाकिस्तान में कोई काबिल बंदे हैं ही नहीं है। शर्म आती है हमें इधर नॉर्थ अमेरिका में जब लोग पूछते हैं हमसे कि भाई तुम्हारे मुल्क में और कोई नहीं है काबिल लोग सवाई ये भुट्टो ही हैं सारे बस और जरदारी हैं बस ये रूल करने के लिए पायान और अब उन्होंने कब्जा किया हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये बात है वो जिस बंदे ने इनका स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की थी इमरान खान ने आम लोगों को वो लेकर आ रहा था मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उसको आपने खुडे लाइन लगाया हुआ है और आप जो है अपनी फिर मनमानी कर रहे हो। चलो ठीक है PMLN जो है उसके कुछ तो चार काम तो उनके नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। चलो जी उन्होंने एटमी धमाके किए उन्होंने जो है मोटरवेज बनाई उन्होंने अपना जो है ट्रेड डेफिसिट जो था उसको कम कर रहे थे कोई पावर जनरेशन के लिए काम कर रहे थे और कुछ जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ला रहे थे कुछ तो उनका नजर आता है। इनका तो पता नहीं अब क्या तीर पीपीपी ने मारे हैं कि इनको लग रहा है कि बस पाकिस्तान हमारा है ऐसी हुकूमत करनी है बाकी सारे बहरहाल क्या कह सकते हैं जी। अच्छा जनाब, आपने ये जुमला अक्सर सुना होगा, पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे। हर दफा आप यही सुनते होंगे, जब भी नई गवर्नमेंट आती होगी तो आप सुनते होंगे पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे, पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे। ये जो पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है, ये इतना कोई मशहूर हो गया है, आपको पता है इसकी एक केस स्टडी बना के अमरीका की जो वन ऑफ द टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी है वो इसको पढ़ा रही है। एनी गेसेस? चलो हम आपका गेस्ट जो है खत्म कर देते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कैन यू इवन इमेजिन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे ये एज अ केस स्टडी पढ़ा रहा है। डिस्पाइट 77 इयर्स, आपको पता है कि अभी भी पाकिस्तान जो है नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, जहां पे के बेतहाशा हाई यूटिलिटी बिल्स हैं, हैवी टैक्सेस हैं, करप्शन है और बड़ा एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ गया है। तो इसके ऊपर एक जो है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए एज फ्यूचर पोटेंशियल लीडर्स के आप ये जो नाजुक मोड़ है इससे आप अपनी कौम को कैसे निकाल सकते हैं, एक केस स्टडी जिसका के टाइटल है पाकिस्तान एट 75 वेयर विल नाजुक मोड़ एंड। ये पढ़ाया जा रहा है प्रोफेसर अल्बर्टो कवेलो, बिजनेस गवर्नमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमी स्प्रिंग 2024 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर ये पढ़ा रहे हैं। ये तो मैं इसका टाइटल फिर से बता दूं, पाकिस्तान एट 75 व्हेन विल नाजुक मोड़ एंड, ये वो पढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने केस स्टडी पूरी पढ़ाई है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मिसमैनेज की गई हैं चीजें और कैसे उनके लीडर्स जो हैं वो करप्शन और हैवी टैक्सेस और उनके अंदर जो उनकी अलीट क्लास किस तरह से लूट रही है, कितनी वो पावरफुल है और कैसे पूरे के पूरे एसेट्स जो हैं वो खा रही है और बाहर अपने एसेट्स बना रही है और उसका जो है आउटकम क्या है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, ये पूरा एज अ केस स्टडी पढ़ाया गया है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स की जो वर्ल्ड रैंकिंग 2024 है जिसमें के एमबीए प्रोग्राम्स को वो रैंक करते हैं, उसमें ये वाली जो केस स्टडी थी पाकिस्तान एट 75 व्हेन विल नाजुक मोर एंड, दैट गॉट 11th पोजीशन इन द होल वर्ल्ड, ये जो है एमबीए के इस प्रोग्राम को। और इसमें जो है प्रोफेसर साहब ने बताने की कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट्स को कि आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहते थे कि जब किसी मुल्क के अंदर करप्शन और गलत लीडरशिप होती है तो उस मुल्क के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे जो हैं उनको वो बढ़ते चले जाते हैं और उनको ठीक नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान का भी उन्होंने यही बताया, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टेंटली ये जो है बेल आउट पैकेजेस आईएमएफ से लेते हैं, हालांकि इस मुल्क के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है। तो पायन हूं मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी पाकिस्तान को पढ़ाएगा ऐसा केस स्टडी, और कुछ दिनों में शायद आप सुन सकते हैं कि शायद स्टैनफोर्ड भी, शायद येल भी पढ़ाए पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे। और भी कुछ केस स्टडीज हैं, लेकिन मैं कहती हूँ होनी चाहिए ये केस स्टडीज, ताकि एटलीस्ट अगर ये केस स्टडीज आएंगी तो हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी। वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन शायद कोई आने वाले लीडर्स को पता चल जाए और वो शायद ये जो नाजुक मोड़ वाली कहानियां हैं ये केस स्टडीज पढ़ के कुछ सीख लें और पाकिस्तान को इस नाजुक मोड़ से हटा लें। मुश्किल है वैसे, ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब, मुझे लग रहा है कि ये इंडिया जो है ना, बिल्कुल पहले हम जब बड़े हो रहे थे ना, नई नई जर्नलिज्म सीख रहे थे, तो हमारे जो उस्ताद थे ना मजद भाई, हमें कहते थे कि इंडिया का जो सिस्टम है ना, कट कॉपी पेस्ट करें आप, देखिए वहां पे जर्नलिज्म में कितनी आजादी है, उनकी जुडिशरी कैसे है। अब मुझे लग रहा है कि इंडिया कट कॉपी पेस्ट पाकिस्तान की सारी चीजें कर रहा है। जैसे उधर ऑपोजिशन को खुडे लाइन लगाया है इंडिया ने, उसको कट कॉपी पेस्ट कर लिया है, वहां पे भी वो ऑपोजिशन को खुडे लाइन लगा रहे हैं, कांग्रेस के फ्रीज कर दिए एसेट्स, केजरीवालों को उठा लिया उन्होंने, है जी, बाकी जो है दीदी को भी बड़ा हार्ड टाइम देते हैं, तो ऐसे करके। अब इधर हमारे मुल्क में 6 जजेस जो हैं उन्होंने कहा जी कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है हमें काम नहीं करने देती, पायन है, इंटरफेयर करती हैं। एग्जैक्टली वही कट कॉपी पेस्ट हुआ है जी इंडिया के अंदर भी। 21, क्योंकि जाहिर है इंडिया वड्डा मुल्क है, उत्थे ज्यादा बंदे होने, 650 ना दे 21 ने, 21 रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड 600 लॉयर्स इन इंडिया जो है, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूर साहब, उनको कहा है जी कि सर्टन पावर्स हमारे जुडिशियल मामलात पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और हमको सही तरह से अपने फैसले नहीं देने देते हैं। हैं जी, देख ले माजद भाई, वो इतना इम्प्रेस हो गया जो है इंडिया पाकिस्तान से, पायन व्हाट इज दिस। अच्छा जी, ये है भारत। और ये जो लेटर लिखा गया है उसमें उन्होंने कहा जी कि कुछ नैरो माइंडेड पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट के लोग हैं वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो जुडिशियल सिस्टम है हिंदुस्तान का उसको बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आपको पता ही है कि ये जो बीजेपी और अपोजिशन के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई हुई है, उसके ऊपर जो है लेटर में लिखा गया है कि जुडिशरी जो है वो डीपली ट्रबल्ड है, क्योंकि ये जो कुछ भी इनके बीच में पॉलिटिशियंस के बीच में चल रहा है वो फिर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे जो फैसले हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके फेवर में हम जो है दे सकें, रूलिंग्स दे सकें। और वो कहते हैं जी कि ये जो बेसलेस थ्योरीज बढ़ाई जा रही है जुडिशरी की रेप्यूटेशन के ऊपर कि ये जी हम गलत काम करते हैं तो हमें जो है इस चीज से बढ़ाया जाए, ये बिहेवियर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके बड़े ही सख्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो आएंगे प्रॉब्लम सामने के लिए सामने आएंगे। और देर इज अ वेरी फाइन लाइन के जहां पे के जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें जो है कॉन्स्टेंटली डराया धमकाया जाता है और हमारे जो है वो हमारी जो इंटेग्रिटी इसकी वजह से जो कोर्ट्स और जजेस की है वो अंडरमाइन हो रही है। तो इसको जनाब आप जरा देखें चीफ जस्टिस साहब, आपको पता ही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो है उनकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको बड़ा फेयर और बड़ा दलेर आदमी माना जाता है। तो वारा जी इन्होंने अब लिखा है, पता चलेगा क्या होता है। बीजेपी जो है वो जनाब डबल इंजन सरकार जो है वो चला रही है, इसका जिक्र जो है किया तेलंगाना के तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जयप्रकाश रेड्डी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी जो है वो हिंदुस्तान को डेट की तरफ लेके जाती जा रही है। उन्होंने कहा जी पिछले 70 इयर्स में कांग्रेस रूल के अंदर टिल 2014 जो हिंदुस्तान का पब्लिक डेट था वो 53 लाख करोड़ था, मोदी जी ने 10 साल में उसको डबल करके 83